अब मैदान-ए-जंग का थोड़ा सा मंजर हमारी आंखों में, बातें तो हो चुकी हैं, सिर्फ आपने इसको अपनी मेमोरी में रिकॉल करना है। सनुल की फी खुलू बिल्लजीना कफर और रोब, हम अन करीब काफिरों के दिलों में रोब डाल देंगे। किसका? मुसलमानों का। वजह बिमाशरकू बिल्ला, इसकी वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह से शिर्क किया। कौन सा शिर्क किया? मालम यह नजिल भी सुल्तानन, जिसकी कोई दलील नहीं है। यानी इस एक जुमले को मैं जरा अपने लफ्जों में समझा दूं, ईमान वालों का रोब काफिरों के दिल पे अल्लाह डालेंगे, क्योंकि काफिरों ने अल्लाह के साथ उन चीजों को शरीक बनाया जिसकी कोई दलील नहीं थी। चलिए आज के मुसलमानों को जरा जहन में लाइए, क्या हमारा रोब है कुफार पे? याद रखिए, सच्चे ईमान के साथ रोब होता है। ईमान रोब पैदा करता है, प्यार मोहब्बत और चीज होती है, लेकिन एक रोब होता है। लोग उसको गलत चीज की दावत तक नहीं दे सकते, उसके मुंह पे आके उसको कुछ कह नहीं सकते। इसी रोब की वजह से तो अल्लाह के नबी की जान ले ही नहीं सके। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि मुझे 5 चीजें ऐसी अता की गई जो मुझसे कबल किसी नबी को नहीं दी गई, और उसमें एक क्या क्या है, नुसिर तो बिर रोबी मसीरत शहरिन, दुश्मन के दिल में 1 महीने की मुसाफत पर मेरा रोब डाल दिया गया। यानी मेरा दुश्मन मुझसे 1 महीना दूर होता था तो उसके दिल में मेरा रोब आता था। तो कल अल्लाह के नबी का रोब था, उसके बाद सहाबा का रोब था, फिर आपकी उम्मत के अच्छे लोगों का रोब था, कि आज हमारा भी रोब है। आज हम तो खुद मरूब हैं। वजह क्या है? ईमान नहीं है। सच्चा ईमान लाएंगे, बच्चों पे भी रोब होगा। आप याद रखिए, ये रोब कोई दुश्मनों के दिल में नहीं डलता। हर उस बंदे का रोब होगा दूसरे पे जो खुद बामल होगा। जिस बात पे उसका अपना अमल होगा, दूसरों को कहेगा, दूसरे उसके रोब में आके उस बात को जरूर मानेंगे। माओ को चीखना नहीं पड़ता अगर वाकई वो अमली मिसाल बन के बच्चों के ऊपर हो, बच्चों के दिलों में उनका रोब होता है। यही बात बाप की है, यही शौहर की है, जिंदगी के हर मामले में ऐसा ही है। और इससे एक और बात पता चलती कि अंदर से काफिर बुजदिल होता है, ऊपर से बड़ा लगता है लेकिन अंदर से नहीं होता। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि अल्लाह ने अबू सुफयान के दिल में रोब डाल दिया और वो वापस चला गया। ये बड़ी खूबसूरत बात है। अगर गजवे उहद में मुसलमानों को फतह नहीं हुई ना, तो शिकस्त भी नहीं हुई। क्यों? जब मुसलमान इतने जख्मी हुए तो दुश्मन जा सकते थे ना मदीना शहर के अंदर, अल्लाह ने उनकी मत ही मार दी, कोई नहीं गए, वापस चले गए। बाहर जाके अबू सुफयान को ख्याल आया, अरे हम तो मदीना पे हमला करते तो मदीना हमारा था। तो फिर पलटे और वो अगली आयतों में पढ़ेंगे, हमरुल असद, जख्मों से चूर सहाबा इतनी लंबी जंग के बाद अगले दिन नबी सल्लम के कहने पे फिर निकल पड़े। हजरत अली को 80 से ज्यादा जख्म लगे हुए थे और हमरुल असद में निकल रहे। क्या वो शख्सियात थी! हम तो एक पार्टी से होके आए तो अगली पार्टी में नहीं जाएंगे फौरन, एक ट्रिप से आए अगले दिन के फिर जाना ट्रिप पे, एक क्लास से बाद के अगली क्लास में जाए, मुमकिन ही नहीं। तो वो तो एक जंग से निकलकर दूसरी जंग पे चले जाते थे। फर्क किस चीज का था? ईमान का था। तो सवाल लिखिए फिर अपने लिए, अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों का रोब कुफार पर कब डाला जाता है? जवाब लिखिए, नंबर 1, जब मुश्किल मवाके पे ईमान वाले जमे रहे। दूसरी बात, जब ईमान वालों के दिल में हकीकी ईमान मौजूद हो तब। इसके अलावा बाकी तो फोकला वो गुब्बारा ही है, ऊपर से ही रहता है। और एक और चीज इस आयत से पता चली कि शिर्क की कोई गुंजाइश इस दुनिया में नहीं है। आप अपनी आंखों के सामने वो मंजर लाइएगा जिसको अल्लाह ताला ने इधर बयान किया, वलकद सदकुमुल्लाहु वादहु, आयत 152, और अल्लाह ने तो तुमसे ताईद और नुसरत का जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। क्या इस तहसूनहुम बिइज़्नि ही, जब तुम उनको तहे तेह कर रहे थे अल्लाह के हुक्म से। ये जो तहसू है ना, इसको लफ्ज हिस से समझिए। हमारे जिस्म के कुछ अज़ा जिसको हिस्सी अज़ा कहते हैं, आंखें, कान, महसूस करना। तो तहसू ना हम कहते हैं किसी के हिस्सी अज़ा को काटना। मतलब अगर कोई तलवार आपकी आंख पे मारेगा ना, तो तकलीफ भी ज्यादा होगी और मौत का खतरा होता है। उसी की तरफ इशारा है। यानी मुसलमान बेदर्दी से लड़ रहे थे और दूसरों को इस तरह से तहे तेज कर रहे थे जैसे गाजर और मूली है। तो तहसु हा सीन सीन से, हिस हवास इसी से है, अहस्सा भी इसी से ही है। मुराद ये है कि बहुत जबरदस्त किस्म की जंग हो रही थी और सहाबा किराम की इसमें बहादुरी भी है। बताया क्या जा रहा है कि गजवे उहद में जो आरजी शिकस्त हुई, मुसलमानों को तकलीफ पहुंची, जिनसे उनके दिल भी जख्मी हुए, वो क्यों थी? क्योंकि अल्लाह ताला मुसलमानों की आजमाइश करना चाह रहा था। यहां तक अगर आप कॉमा लगा ले ना, तो मैदान जंग का पहला हिस्सा, गजवे उहद का मैदान दो हिस्सों में बटा। पहला क्या था? इस हुसूनाउम बिजनी, खूब मुसलमानों ने उनके ऊपर हाथ साफ किए, लेकिन हत्ता इजा फशिल तुम, फिर इसके बाद जब तुम ढीले पड़ गए, बुजदिल हो गए। पहली बात यहां फिर नोट कीजिएगा, एक बात, पहले ढीलापन आया, फिर वह तनाजा तुम फिल अमरी, फिर तुमने झगड़ा शुरू कर दिया एक काम में। फशिल तुम का तर्जमा मैं पढ़ के सुना देती हूँ, डिसिप्लिन को ढीला करना मुराद है। इस्लामी नज़्मे जमात में समय और तात को बुनियादी अहमियत हासिल है, और ये एक ही शख्स की तात मकसूद नहीं होती, अल्लाह के नबी की तात फर्ज थी। अगर आप किसी को अमीर मुकर्रर करते तो उसकी तात भी फर्ज थी। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, आपने फरमाया, मन अतानी फ़कद अता अल्लाह, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, व मन असानी फ़कद असल्ला, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की, और व मन अता अमीरी, जिसने मेरे मुकर्रर करदा अमीर की इताअत की, फ़कद अतानी, उसने मेरी इताअत की। यहां से देखिए लीडरशिप को मानना कितनी बड़ी बात है। और लीडरशिप में कोई जरूरी नहीं कि मजहबी रहनुमा या सियासी रहनुमा हो, छोटे छोटे आपके ग्रुप लीडर्स भी आपके अमीर हैं, आपके कोर्स इंचार्जेस, क्लास इंचार्जेस, एडमिन्स भी अमीर हैं। फरमाया, जिसने उनकी इताअत की उसने मेरी की, वमन असा अमीरी फकद असानी, जिसने मेरे अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। तो जब अमीर की इताअत नहीं होती तो सुस्ती भी आई और फशिल तुम झुकल पड़े। जो फशिल तुम का लफ्ज है इसको जरा देख लें, फाशीन लाम से है। पहले गुजरा कोई आप में से बताएगा? फाशीन लाम से कोई लफ्ज पीछे आपने गुजरा? चलिए फिर लिखिए, फशला, कमजोर और बुजदिल होने को कहते हैं। अभी बोलूंगी तो आपको याद आ जाएगा, हौदज के पर्दे को कहते हैं जिसके पीछे औरतें बहती हैं। अल्फिशलू 3-4 लेसन पहले आपको बताया था। तो यहां फशला में मुराद है मर्दों का बुजदिल हो जाना, औरतों की तरह चूड़ियां पहन लेना, वही लफ्ज है। और तनाजा क्या है? खेचा तानी, मैं भी सही वो भी सही, नजा, इसी से जान निकलने के लिए निजा का वक्त है। क्या पता चला कि जब आपस में किसी गिरोह में खींचातानी हो जाती है, डिसिप्लिन लूज होता है, तो फिर जीती हुई जंग हार में बदल जाती है। अल्लाह के नबी ने कहा था, अगर तुम देखो कि चीले और कवे हमारा गोश्त खा रहे हैं, फिर भी यहां से ना हटना। कुछ कहेंगे, नहीं, ये तो शिकस्त की सूरत में था, अब तो फतह हो गई है। कुछ ने कहा, नहीं ये तो बात वक्ती थी, अब तो बात नहीं है, ये नहीं, भूल गए। और हाल क्या हुआ के भूल गए। वा सही तुम इम्बादी मारा कुमा तो हिबून, और तुमने नाफरमानी की इसके बाद कि तुमने वो चीज देख ली जो तुम्हें महबूब है। क्या देख लिया था और क्या हुआ था याद है? बाज कहते माले गनीमत है, बाज कहते नहीं। क्यों? इसलिए कि माले गनीमत की बांट तो गजवे बदर के बाद आ ही चुकी थी। कुरान में सूरत अनफाल में हम पढ़ेंगे, वो तो उनको पता था कि हमें मुकर्रर हिस्सा मिलना है। यहां मुराद है मा तो हिबून से फतह। वहां फतह देख कर खुद नेमत पाके संभाल नहीं सके। यह बड़ी बारीक बात है, जरा सा इसको गौर से समझिएगा। जिंदगी में हम कुछ चीजों की तमन्ना कर रहे होते हैं, शादी हो जाए, 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 हो गई। अब शादी क्या थी? माँ तो हिब्बुन, हो गई। अब किया क्या? वा सही तुम इम्बादी माँ, जू ही अल्लाह आपकी मनपसंद नेमत आपको देता है, आप नमाज ही छोड़ देते हैं, अल्लाह का रास्ता ही छोड़ देते हैं। आप कोई कमिटमेंट करते हैं तो वो पूरी नहीं करते। क्या पता चला कि मनपसंद चीजों को देख कर अल्लाह की नाफरमानी करना अल्लाह के गजब को आवाज देना। बच्चा नहीं है जी, बच्चा ही नहीं है, बच्चा नहीं, आधे बच्चा हो गया बच्चा, माँ तो हिपुन। आज पूरी दुनिया को देखिए, सिर्फ इस माँ तो हिब्बून के पीछे भागकर नाफरमानियां करती दिखती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अपने ऊपर गौर करो, सोचो, मिन को मयूरी दो दुनिया, जो दुनिया चाहते हैं, वह मिन को मयूरी दो आखिरा, कुछ आखिरत भी चाहते हैं। यानी हर तरह के लोग एक गिरोह में मौजूद होते हैं। सुम्मा सरफकुम अनहुम लियब्तलियकुम, फिर अल्लाह ने तुम्हारा रुख फेर दिया उनकी तरफ से ताकि तुम्हारी आजमाइश करें। यानी पहले वो भाग रहे थे और तुम उनके पीछे थे, अब मामला उल्टा हो गया, तुम जाने बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे और वो तुम्हारे पीछे थे। जंग का पानसा ही बदल गया। वलकद अफा अनकुम, और अल्लाह तुम्हें माफ कर चुका है। والله حضو فضلنا للمؤمنین، اللہ اہل ایمان کے حق میں بڑے فضل والا ہے. دیکھیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کوئی مان نہ کرے، آج آپ بہت اوپر جا رہے ہیں تو اب نیچے بھی جا سکتے ہیں، آج آپ فتح پہ کل آپ شکست میں ہوں گے، جب کام کرنا چھوڑیں گے ڈھیلا کریں گے آپ نیچے چلے جائیں گے، دوسرے آگے چلے جائیں گے، یہ تو فطرت کا اصول ہے. کوئی کامیابی ہمیشہ کی نہیں ہوتی، جب تک آپ ویسے ہیں جیسے شروع میں تھے کامیابی رہے گی، آپ ڈھیلے ہوں گے آپ کی کامیابی بھی کمزور ہو جائے گی. اور یہ ساری بات کر کے اب آخری آیتوں میں دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پکارنا، ذرا اس کے درد کو بھی محسوس کیجیے گا. بالکل آیت کے اندر پاس میں پڑھتی ہوں، پھر اس پہ اکٹھی بات ہو جائے گی. صحابہ کرام جگہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچ گئی ہے، آپ اب اس وقت میں ان کو کیسے پکارتے ہیں؟ بالکل جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں نا منظر کشی، آیت 153 میں اس تو سیدون، یاد کرو جب تم پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے، یہ جو لفظ ہے تو سیدون، سعادہ کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانا، مست کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو پتا؟ لفٹ کو کہتے ہیں عربی میں، ہائس کو، نیچے سے اوپر لے کر جاتی ہے نا. تو جب تم پہاڑ پر چلے جا رہے تھے، کس لیے؟ بریکٹ میں لکھ لیں، جان بچانے کے لیے. ولا تلبون علی احد، اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے. ور رسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے، یعنی غزوہ احد میں خالد بن ولید کے اچانک حملے کے بعد بھگدڑ مچی، اس کا تذکرہ. بس صحابہ نے اللہ کے نبی کو اپنی حفاظتی حصار میں لیا ہوا تھا، اپنے جسم کو ڈھال بنا کر اللہ کے نبی کی حفاظت کر رہے تھے کہ آپ کو نہ کچھ ہو. کچھ پریشان ہو کے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کوئی احد کی طرف جا رہا تھا اور اللہ کے نبی پکار رہے تھے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، میری طرف آؤ اللہ کے بندو. آپ اپنی آواز سنا رہے تھے کہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ میں زندہ ہوں. یہ بھی ایک حکمت ہے، جب ٹیم ٹوٹنے لگے تو ان کو اپنی آواز سنائیں کہ میں موجود ہوں، چاہے آپ سے دور ہوں، پتا تو ہے آپ کی باتیں مجھے، آپ کیا کر رہے ہیں. فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، تو اللہ نے تم پر غم کے بعد غم مسلسل ڈالے. کیا غم؟ فتح کے شکست میں بدلنے کا غم، مال غنیمت کے چھننے کا غم، 70 صحابہ کی شہادت کا غم، اور رسول اللہ کے زخمی ہونے کا غم. کیوں ڈالے؟ یہاں لکھے یہ جنگ سے نکل بھی جائیں گے نا تو بڑا خوبصورت نقطہ ہے زندگی میں. ایک غم کے بعد اللہ دوسرا غم کیوں ڈالتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا میری زندگی میں تو غم ہی بڑے ہیں، جس کو کہتے ہیں مشکلیں اتنی ٹوٹی پڑی کہ آسان ہو گئی. کیوں ڈالے؟ لِکَئِ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. یقین کریں زندگی میں ڈپریشن سے نکلنے کا علاج ہے اس آدھی آیت میں. غم کے بعد غم کیوں آتا ہے؟ تاکہ تمہیں آئندہ کے لیے سبق ملے کہ تم غمگین نہ ہوا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا، اور نہ اس تکلیف پر جو تم پر آ پڑے. وہ ایک شعر بھی نا کہ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. بڑے غم اللہ کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ پچھلے غم بھول جائیں. میں آپ کو مثال دیتی ہوں، کسی گھر میں بوڑھی دادی کا انتقال ہو گیا، غم تھا نا، ابھی ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور پھوپھیاں اور سارے چچا اور سارے رو دھو رہے ہیں، اتنے میں اسی گھر کے ایک چھوٹے بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے اور ہاسپٹل لے کے بھاگتے ہیں. کیا وہ دادی کی موت کا غم یاد رہے گا اس پوتے کے بیمار ہونے سے یا چوٹ لگنے سے؟ بعض دفعہ اللہ ہمیں ایک پہ دوسرا غم اس لیے ڈالتے ہیں کہ پچھلا غم مٹ جائے. یقین کریں اسلام سے زیادہ خوبصورت طریقے سے سائیکٹرسٹزم کوئی کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے شکست کا غم بلانے کے لیے مسلمانوں کو زخمی کر دیا. یہ زخم سہلاتے رہیں گے، پٹیاں بدلتے رہیں گے نا، تو ان کو اپنے یہ شکست کے غم بدل جائیں گے. یہ خوش رہنے کا راز ہے، جس میں تکلیفوں کو بھی اللہ تعالیٰ اتنا خوش نما کر رہا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ اس میں باقی چیزوں کا کیا مسئلہ ہوگا. اور یہی بات بالکل آپ سورۃ الحدید میں بھی پڑھیں گے، اپنی زندگی کا نسخہ بنا لیں. بڑے سے بڑی چیز ہاتھ سے چھوک گئی، ہزاروں لاکھوں کروڑوں نکل گئے، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، بھائی چلا گیا، شوہر چلا گیا، جو بھی چلا جائے ہاتھ سے، لا تحزنو، پتھر بن جائے، آ جاؤ کوئی بات نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کی طرف سے آئی بھی چیز پیاری لگتی ہے، چاہے آپ کو پسند نہ بھی آئے. آپ کہتے ہیں اس نے دی ہے، اللہ سے آپ کو پیار ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دی، تحفہ تھا نا، اچھا لگا، پھر اللہ نے اولاد لے لی تو اچھا تو نہیں لگا، لیکن کیوں پیار ہے؟ آیا کدھر سے ہے؟ اس کو دیکھیں. زندگی میں اپنی نظریں اپنے رب پہ لگا لیں، तो खुशी गम आपके लिए बिल्कुल एक बराबर हो जाएगा। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह बखबर है इससे जो तुम कर रहे थे। सुम्मा अंजला अलैकुम मिन बादिल गम्मी अमनह, फिर इस गम के बाद अल्लाह ने तुम पर इत्मीनान नाजिल किया। कैसे? नुआस है यक्षा ताइफतम मिनकुम, वो एक नींद थी जो तुम में से एक गिरोह पर तारी हो गई। ये है ईमान की अलामत। आज आप अपने आप से पूछें, रात को नींद ठीक आती है? वैसे कितनों को ठीक आती है, जरा हाथ खड़े करें। कौन है जिनको यहाँ बड़ी अच्छी नींद आती है? यहाँ भी सो जाया करें, कोई बुरी बात नहीं है, ये अल्लाह की नेमत है। अपने लिए लिखे, यकीन करें इतना बड़ा क्राइटेरियन है आपको अपने ईमान को टेस्ट करने का कि मोमिन को तकलीफों में, दुखों में, गमों में चैन की नींद आती है। जब लोग कहते हैं ना मेरी नींदें उड़ी हुई हैं, मान लीजिए अपने ईमान की चुगली खा रहे हैं कि ईमान रुखसत है। बड़ी से बड़ी तकलीफ और अमन, आप देखिए ना, मैदान जंग में बैठे हुए हैं और सो रहे हैं, हाथों से तलवारें झूल रही हैं। नुआस जो है ना, स्नूजिंग में चले जाना, स्लो स्नूज, थोड़ी देर के लिए ऐसे बस आंखें बंद होना, फिर आप फ्रेश हो जाते हैं, नींद का बिल्कुल इब्तदाई दर्जा। ये रहमत है। हदीस में आता है कि मैदान जंग में ये हालत रहमत है, और नमाज में ये शैतान की तरफ से, और क्लास में हमारी अपनी तरफ से। अगर रात को जल्दी नहीं सोएंगे तो क्लास में तो फिर सोएंगे ना। लेकिन बहरहाल ये है कि ये अल्लाह की रहमत थी। और आप देखिए, 2 मिनट सो के उठे फ्रेश होते हैं कि नहीं? मैं अक्सर साथियों को कहती हूँ, यहाँ या आमतौर पर तो इतना हेक्टिक ही नहीं होता, ट्रिप्स में जहाँ दो दो तीन तीन प्रोग्राम में, मैंने कहती हूँ मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दें। कहीं जा रहे हैं एक दर से उठ के दूसरे में, तो मैं कहती हूँ गाड़ी में कोई बोले ना, मैंने सिर्फ आंखें बंद करने 2, 5, 10 मिनट, और मैं ऐसे फ्रेश हूँ कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ये अल्लाह की रहमत है। ये जो कैलूला है इसमें भी ये खूबी है। और आपको तो कि अब चाइना और कोरिया और ये जितने भी एशियंस कंट्री के उस तरफ है, वो इस चीज को मान के कर क्या रहे हैं, अपने वर्कर्स के कामों के दौरान ही उनको वहीं नैप लेने के लिए कहते हैं सो जाओ अपने टेबलों पे, उनके बच्चे स्कूलों में सो जाते हैं टेबलों पे। आप कहेंगे हम भी सो जाएं, आपको सो गए तो आपको उठाना किसने? लेकिन ये बात सच है कि वो इस चीज को लेके आ रहे हैं। और आपको बताऊं कि एक मुल्क ऐसा है कि जहां लोग 2 दफा काम करते हैं दिन में, पता है आपको? सुबह से शिफ्ट शुरू करते हैं, 7, 7:30 तक का दिन का टाइम है, फिर घरों में आ जाते हैं, फिर 2-2.5 घंटे काम करके वापस जाते हैं, और 8 से लेकर रात 12 बजे तक जागते हैं जर्मनी में। जी, जो उनके खास नेशनल्स हैं ना अपने लोग, और ये जो आखिरी घंटे हैं ना 4, ये जो करते हैं ये फ्री काम करते हैं, और अगले दिन सुबह 8 बजे फिर आने। क्यों? किसी ने उन्हें कहा कि तुम्हें तो इसकी तनख्वाह भी नहीं मिलती, उन्होंने कहा हमारे इस एक्स्ट्रा काम से हमारे मुल्क को फायदा होता है, एक्स्ट्रा काम करेंगे, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनेंगे, एक्स्ट्रा लोग होंगे, गरीबों को खाना मिलेगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और एक खास लेवल जो वहां रहने वालों का है, और कुछ जगहों पे इस चीज पे अमल करते हैं, ये स्पिरिट काम कराती है। कौन आपको मुझे यहां सारा दिन रोक सकता है? है कोई हमें रोकने वाला? कोई भी नहीं है। सिर्फ ये हमें हमारी ये सोच रुकवा सकती है कि यहां मर गए तो शहादत है। असल बात यही है। और दूसरे गिरोह का हाल सुन लीजिए, वताइफतुन कद हम्मत हुम अनफुसुहुम, अल्लाह हमें उनमें से ना करे। एक ऐसा गिरोह था जिन्हें अपनी जानों की पड़ी हुई थी, सेल्फ सेंटर्ड लोग, लिख लें, सेल्फ पिटी का शिकार, खुद पे रहम खाने वाले। पहले गिरोह को इस्लाम की फिक्र थी, इनको अपनी जान की फिक्र है। यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक्की ज़न्नल जाहिलिया, वो अल्लाह के बारे में ना हक जहालत वाले गुमान कर रहे थे। नाउज़ुबिल्लाह। अब्दुल्ला बिन उबई तो 300 लोगों को लेकर शुरू में चला गया ना, अभी भी कुछ साथी साथ थे उसके, यानी आप कहें कि इन 700 में से भी कुछ मुनाफिकीन थे। उनका हाल क्या था? पूरी जंग के दौरान उन्हें अपनी जानों की फिक्र पड़ी थी, उन कहां आएगी, उनकी तो जान पे बनी हुई है। वसवसे, कभी कहते अल्लाह की मदद का वादा था, हुआ तो नहीं पूरा, लो जी अब तो नबी भी चले गए। ऐसे खोटे दिल वालों के जुमले सुनिएगा जो अपने आप से बोल रहे होंगे, ये कुलूना, वो कहते थे हल्लना मिन अलम्री मिन शहीन, भाई हमारी भी कभी को मर्जी मानता है कि नहीं इधर, यानी क्रॉस क्वेश्चनिंग देखिए। मुनाफिक किस्म के लोग कहते थे हमारी तो कोई बात ही नहीं मानता जी, हल्लना मिन अम्रिन मिन शहीन, कोई हमारा इख्तियार है, कोई हमारा मशवरा इधर माना जाएगा कि नहीं। बात कहते हैं ये वो लोग थे जिन्होंने जंग से कबल मशवरा दिया था कि मदीना में बैठ के लड़े, तो अब यहाँ आके भी यही ताने दे रहे हैं, हमारी तो कोई मानता ही नहीं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं, मशवरा मांग तो लेते हैं मानते नहीं है, ये है वो है, और बात तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी। लिखिए, साथ मिलकर काम करने वालों की जिंदगी में शैतान ये खराबी डाल देता है, हर शख्स ये चाहता है मेरी बात मानी जाए, यानी वो अपने मशवरे को मशवरा नहीं हुक्म समझता है, क्योंकि हुक्म ही माना जा सकता है ना, मशवरे का तो मतलब है कि एक से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का, तो अपनी राय को अहमियत देना ये मुनाफिकों की उस वक्त की आदत थी। अल्लाह कहते हैं इनको जवाब दीजिए, कुल कह दीजिए, इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाह, सारे का सारा मामला अल्लाह के इख्तियार में है, यानी आपकी नहीं हम मान सकते, जो अल्लाह हमें हुक्म दे रहे हैं वो करें, क्योंकि अल्लाह का फैसला था कि जंग बाहर आके हो। तो क्या पता चला कैसे मुनाफिकाना सोच रखने वालों से ज्यादा लंबी बात नहीं करनी चाहिए। का युखफू नफी अनफुसिहिम मा ला युबदूना लक, या नबी ये अपने दिल में वो बात छुपा रहे हैं जो आप पर जाहिर ही नहीं कर रहे, यानी ऊपर से तो ये आपके साथ मैदान जंग तक आ गए हैं लेकिन इनका दिल आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह इनकी बातें खोल रहा है। ये कुलू ना, वो कहते हैं, अब ये दूसरी बात, पहली क्या थी, हमारी तो बात ही नहीं कोई मानता, हमारी कोई अहमियत ही नहीं इधर, दूसरी बात यकूलून लौ कान लना मिन अल-अम्रि शैयुन मा कुतिलना हाहुना, अगर हमारे इख्तियार में कुछ हिस्सा होता तो हम यहां ना मारे जाते। तकदीर के मुनकर, लौ कहने वाले, काश कहने वाले, कहते थे अगर हमारी राय मानते, मदीना में रहकर जंग करते ना, हमारे मशवरे पे अमल करते, आज ये सारे यहां ना मरते। कुल लौ कुंतु फी बुयूतिकुम, कहा इनसे कह दो, अगर तुम सब अपने घरों में ही होते, लबरज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल इला मदाजीहिम, तब भी जिन लोगों का कत्ल होना मुकद्दर था वो अपनी कत्ल गाहों तक पहुंच चुके होते। मदजा कहते हैं बिस्तर को, सोना, मजाजी आप सूरत सजदा में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ कत्ल गाह मुराद है, क्योंकि उसमें भी बंदा एक लंबी मौत सो जाता है ना। मुराद ये कि तुम ये कह रहे हो ना निकलते तो ना मारे जाते, ये तो अपने घरों में होते तो वहां भी मर जाते, अल्लाह की मशीयत थी। वलियब्तली अल्लाहु मा फी सुदूरिकुम, और ये मामला जो पेश आया इसलिए था कि अल्लाह उसे आजमा ले जो कुछ तुम्हारे सीनों में है। वलियुमख्खिस मा फी कुलूबिकुम, और ताकि बिल्कुल पाक और खालिस कर दे जो तुम्हारे दिलों में है, क्योंकि वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह ताला सीनों के अंदर की छुपी हुई बातों को भी जानता है। बात समझे, तीन मकासिद बताए गए इस एक आयत में कि ये सारा कुछ मदीना से बाहर निकलवा कर जंग का किया जाना ये क्यों हुआ, ताकि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के पोल खोले। देखिए ना, मदीना शहर में जंग होती तो इन मुनाफिकों का पता चलना था, घर में बैठे हुए किसी को क्या पता क्या कर रहे हैं, मैदान जंग में तो निकले तो पता चल गया, और सबसे बड़ी बात है कि इनके बुजदिली खुल गई। अल्लाह सुबहान तआला इनकी इन सारी बातों को क्या ले रहे हैं इस वक्त, ये सिर्फ इस वक्त जलती पे तेल डाल रहे हैं। याद रखिएगा, जब फतह होती है ना किसी ग्रोह को, टीम को, इदारे को, किसी ग्रोह को, तो सब के नाम चली जाती है, सबकी कोशिशें, और जब शिकस्त होती है ना तो सारी लीडर के सर पे थोप देते हैं। नौसुबिल्ला सुम्मा नौसुबिल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे थे कि आपको सही जंगी टैक्टिक्स नहीं आती, आप जो है ना हमारे ऐसे और वो हैं और आपकी वजह से इतने लोग मारे गए, मिस मैनेजमेंट, आपने अपनी मर्जी की मदीना से निकलकर बाहर आ गए, ये हुए। अल्लाह ताला उसी की बात करें कि तुम्हारी ये दिल की भड़ास निकलनी तब थी जब तुम यहां आए हो। क्या पता चला कि जंगों और ऐसे मार्कों का मकसद दिलों के खोटे लोगों से इस्लाम को पाक करना भी होता है। और आखिरी आयत में कहा इन्नल लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमान, तुम में से जो लोग मैदान जंग से चले गए उस दिन जबकि दो गिरोह एक दूसरे के मुकाबले में आए, ये कौन थे, मुखलिस लोग थे। अचानक हमले के बाद जंग की शिद्दत से घबराकर अपनी जान बचाने के लिए वक्ती तौर पर पीठ फेरी थी, कुछ ओहद पर चले गए, कुछ जरा सा आगे बढ़कर मैदान जंग से बाहर चले गए। इसमें बड़े बड़े सहाबा के नाम है, पता है आपको किसका नाम आता है इसमें, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु का भी। सही बुखारी का वाक्य है कि एक हज के मौके पर एक शख्स ने हजरत उस्मान पे आकर इतराजात किए, कहने के तुम उस्मान की बात करते हो, बदर में तो वो शामिल ही नहीं हुए, बैते रजवान में तो शरीक ही नहीं हुए, और ओहद के मैदान में भाग गए। इब्ने उमर ने उनकी बात सुन के जवाब दिया कि देखो बदर में उनकी अहलिया जो अल्लाह के नबी की बेटी थी बीमार थी, तो अल्लाह के नबी तो उनको खुद छोड़ के गए, बैते रजवान के मौके पर तो आप सफीर बनाकर मक्का भेजे हुए थे, उन्हीं की वजह से तो ये बैत हुई थी, और अल्लाह के नबी ने अपना हाथ उनके हाथ की जगह रखा, और यौम ओहद के फरार को तो अल्लाह ने खुद कह दिया लकद फल्लाह अनकुम, तो तुम्हें क्या एतराज है उन पर बात करने का। क्या पता चला कि ये सब इंसान थे। यहां से कितना खूबसूरत मंजर है कि बड़ी से बड़ी गलती भी मुखलसीन की ओवरलुक कर दो, फिर क्या हुआ, काम करोगे तो गलतियां करोगे, انما استزلهم الشیطان، یہ تو اصل میں شیطان نے ان کے پاؤں پھسلا دیے تھے۔ ایسا نہیں لگ رہا اللہ تعالیٰ ان کی سائڈ لے رہے ہیں، پر کیوں پھسلائے تھے؟ اب یہ مجھے آیت بہت ڈراتی ہے اپنے لیے ہمیشہ۔ شیطان کن کے قدم پھسلاتا ہے؟ بِبَعْدِ مَا كَسَبُوا، ان کے بعض افعال کی وجہ سے۔ لکھیے گا یہ آپ کے بھی اور میرے لیے بھی ہے، بعض دفعہ ہم سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، ہم کسی کام میں پیچھے ہوتے ہیں، ہم ہونا نہیں چاہتے، ہم پہ پابندی لگ جاتی ہے، آج تم اسکول نہیں جا سکتی، ہم رو رہے ہیں دھو رہے ہیں، پابندی لگ گئے گھر بیٹھ گئے، اب ہم رو رہے ہیں، میں تو اتنی سچی تھی، میں تو اتنے دل سے کورس کر رہی تھی، یہ آج جو آپ پہ پابندی لگی نا، یہ بیمار کا سبب، یہ آپ کا کوئی دو تین دن پہلا کوئی اللہ سے معاملے میں گناہ تھا، اللہ نے آج کسی کو آپ کے اوپر پابندی لگوا کر بھیج دیا۔ سمجھ آئیے بات؟ جب بندہ کوئی برا کام کرتا ہے نا، تو شیطان اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں، انسانی کمزوریوں کی وجہ سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ کوئی وقت ایسا اڑنگا لگا دیتا ہے کہ بندے کو پھسلا دے، چاہے کتنا نیک اور صاحب رتبہ کیوں نہ ہو۔ اس لیے اس آیت کے آئینے میں اپنے آپ کو ہمیشہ ہم چیک کریں، جب کبھی میں دین سے پھسلوں تو ڈھونڈوں اپنا وہ عمل جس کی وجہ سے شیطان کو موقع ملا مجھے پھسلانے کا، رہ کے اللہ تو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تو ان کو معاف کر چکا ہے۔ یہ ہیں وہ جملے جس پہ شیعہ حضرات صحابہ کرام پہ گالم گلوچ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، نبی کو چھوڑ گئے، یہ کر گئے، میدان جنگ سے بھوک گئے، اللہ کرے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے، مہربان ہے، حلیم ہے، تحمل والے ہیں۔ کیا پتا چلا کہ مجھے آپ کو صحابہ کے بارے میں کوئی بات بری نہیں کرنی، اچھی ہی کرنی ہے۔ ان کی نیکیوں کو تو ذرا دیکھیے، کیا تھے وہ؟ اور آپ دیکھیے کہ یہ سارا کچھ پڑھتے پڑھاتے ہوئے مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ تو ایک چند گھنٹے کی جنگ ہوگی نا، یہ بندہ مومن کی ساری زندگی کی جنگ ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی اس چند سالوں مہینوں کی زندگی سے کچھ لینا چاہتے ہیں نا، نہ ادھر دیکھیں نہ ادھر دیکھیں، نہ کسی کی شاباش سے بھاگنے لگے اور نہ کسی کی تنقید سے رکیں، بس سر ڈال کے اپنے حصے کا کام کر کے اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ ربنا تقبل منا، بس، اور تو مجھے اس نیت پہ اٹھانا۔ میں اپنے اوپر لے کر کہتی ہوں کہ میری کوشش سے کسی ایک بندے کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا نا آج، مجھے کوئی پرواہ نہیں، خوشی تو بہت ہوگی جب ہزاروں کو ہوگا فائدہ، لیکن پرواہ کوئی نہیں، اس لیے کہ مجھے تو اللہ نے لگایا ہوا نا، میرا نام تو حضرت نوح کے قافلے میں لکھا ہوا نا کہ میں داعی دین تھی، دیٹس اٹ۔ ان کے ساتھ تو کوئی نہیں، ہمارے ساتھ تو کوئی دو چار تو ہم جیسے ہوں گے نا۔ اور یقین کریں غزوہ احد میں جو حالات ہوئے تھے اس کو پڑھیں نا آپ، جب حقیقی معنوں میں، آپ سیرت میں بھی انشاءاللہ محسن انسانیت میں پڑھیں گے آگے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، زخم پہچانے گئے تھے۔ آج ہماری بھی موتیں آتی ہیں، لیکن کس طرح اور ان کی وہ موت کیسی تھی؟ تو یہ بس اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ مالک تو ہمیں اس راستے پہ لگائے رکھ۔ بزدلی سے بچنا ہے، آج کے پورے سبق میں سے جو چیزیں اپنے لیے نیگیٹو نکالنی ہے، نمبر ایک بزدل نہیں ہونا، بد دل نہیں ہونا، آپس کا اختلاف ہوا نہیں دینی، نافرمانی نہیں کرنی، میدان عمل سے بھاگنا نہیں ہے، غلط کر رہے ہیں ٹھیک نہیں کر رہے، صحیح نہیں کر رہے، بس کرتے رہیں، اس لیے کہ آتا ہی اتنا ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، بس۔ اور جو کمی بیشی اس سے معافی کو مانگ لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی دوسرے کو جو نیکی کا کام کر رہا ہے نا، اس کے بارے میں نیگیٹیوٹی کا شکار نہ ہو۔ بڑے بڑے صحابہ سے اگر ایسی کمی بیشیاں ہو گئی تو آج کے دور میں کتنے لوگ دین والے، کوئی کسی جماعت کو پریزنٹ کر رہا ہے، کوئی کسی گروہ کو، آپ پلیز اس کو کچھ نہ کہنا، مجھے حق ہے، ہمارا کوئی کسی سے لینا دینا نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ جس میں کوئی کمی بیشی اس کو دور کر، لیکن یہ اس سے اچھا ہے جو دوسروں کو گناہوں کی طرح بلاتا ہے، دیٹس اٹ۔ محبت کرو، محبت سے پیغام پھیلاؤ، آپ دیکھیں گے کہ آج بھی مسلمانوں میں بہت خیر ہے۔ تو انشاءاللہ اگلا جو سبق ہے اس میں تو نبی کا کردار ہے، آج ہم نے فالوورز کا کردار دیکھا نا، اگلے میں انشاءاللہ ہم ایک نبی، ایک لیڈر کا کردار جو انتہائی خوبصورت ہے، اور اس سے ہمیں ورکنگ میتھڈالوجی سمجھ آئے گی، ساتھیوں کی کن غلطیوں کو اوور لک کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، ایک غلطی پہ چھوڑ دینا ہے، یہ لے کے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگلے سبق میں آئیں گی۔ یہاں پہ یہ بات تو پوری ہوئی۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم